श्लोक है, मैं पूरा श्लोक पढ़ लेता हूं एक बार, फिर बाद में आप बोल सकते हैं। एवं योनि गतो जीव स नित्यो निराहंकरकतः यवत् यत्रो पालाया भियेत तावत् सात्वम ही तस्य तत् स नित्यो निराहंकरतः स नित्यो निराहंकरतः यावद्यत्र पलभ्यते यादप्यत्र पलभ्यते तावत् सत्वं हि तस्य तत् एवं योनि जीवात्।
श्री प्रभुपाद के द्वारा भले ही एक जीवात्मा मर्त्य देहों के संबंधों के कारण दूसरी जीवात्मा से संबद्ध जान पड़े, किंतु जीवात्मा शाश्वत है। वास्तव में शरीर जन्मता और नष्ट होता है, जीवात्मा नहीं। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि जीवात्मा की उत्पत्ति या मृत्यु होती है। जीवात्मा का तथाकथित माता पिता से कोई संबंध नहीं होता। जब तक जीवात्मा अपने पूर्व कर्म के फलस्वरूप किन्हीं माता पिता का पुत्र कहलाता है, तभी तक माता पिता द्वारा प्रदत्त शरीर से उसका नाता रहता है। इस प्रकार वह अपने को मिथ्या ही मानकर, वह अपने को मिथ्या ही उनका पुत्र मानकर अत्यंत स्नेह जताता है। मरने के बाद यह संबंध नष्ट हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य को झूठे ही हर्ष तथा शोक में लीन नहीं होना चाहिए। तात्पर्य, जब जीवात्मा शरीर के अंदर रहता है तो अपने को झूठे ही शरीर मान बैठता है। अपने शरीर एवं तथाकथित माता पिता के साथ उसका संबंध झूठा रहता है। यह मोह बुद्धि है। जब तक कोई जीवात्मा की वास्तविकता से अवगत नहीं हो लेता, मनुष्य इसी मोह में रह आता है।
मुझे बहुत आनंद होता है कि पहली बार हम अपने बेलगाम सेंटर के मंदिर में आए हैं। हमारे खास मित्र और गुरु भाई देवामृत प्रभु, हम बहुत सालों से पहचानते हैं। उन्होंने बहुत विनती किया मेरे को कि आप कोल्हापुर तक आते हैं तो यहाँ तो आना ही चाहिए। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी समझाते हैं, और जिसने पढ़ा है दसवां स्कंद उसका 87 नंबर का चैप्टर जो है, उसमें जो प्रार्थना करते हैं वेदों, उसमें बताया गया है कि नारद मुनि समझाते हैं उसमें कि जो शरीर है अपना वो किसकी प्रॉपर्टी, माने मालिकी किसकी है। माता की, जिसने अपने को जन्म दिया, उनके उदर में 9 महीने रखा और फिर उन्होंने जन्म दिया, वो जिस खाया है माता जी ने वही सब बच्चों का भी शरीर बनता है। तो शरीर माता का है या शरीर पिता का है, या शरीर जो राजा होता है गांव का या शहर का या देश का, उसका प्रॉपर्टी है, किसका है वो प्रश्न आया था। तो नारद मुनि ने समझाया है कि जो शरीर है वो प्रकृति का मालिकी है, क्योंकि प्रकृति होती है वो ये पंच महाभूता का मालिक बन जाते हैं। माने अपना शरीर जो है धरती, वायु, अग्नि, फिर आकाश वगैरह 5 महतत्व है, अर्थ, वाटर, जल, अग्नि, ये सब चीजें प्रकृति का मालिकी है। तो उससे यह शरीर बनता है। इसका साबूत क्या है, व्हाट इज द प्रूफ, तो देखिए जी, आप कहां भी जाइए दुनिया में, अफ्रीका में, कांगो में जाइए या नॉर्थ पोल पे जाइए, इसकी मो जहां रहते हैं, बर्फ के घर में ही रहते हैं वो लोग, ऐसा घर नहीं होता उनका, उनका बर्फ का ही बना हुआ घर होता है वहां। तो सबका टेम्परेचर एक ही है, नॉर्मल टेम्परेचर, अपने जो आदमी होता है, कोई भी आदमी हो, अफ्रीका के माने निग्रो जंगल में रहता है वो या एस्किमो हो, उसका नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फारेनहाइट या 36 डिग्री सेंटीग्रेड, वही होता है नॉर्मल टेम्परेचर। आपको ऐसा लगेगा कि वो इतने गर्म देश में रहता है तो भी यही टेम्परेचर, और इतना ठंडा देश जहां बर्फ ही बर्फ, उसका घर भी बर्फ का है, वहां भी उसका टेम्परेचर वही है नॉर्मल टेम्परेचर। उसका कारण यह है कि शरीर में, यही शरीर में हृदय है, और हृदय में दो, जैसे हरे पक्षी होते हैं जंगल में, वैसे जीवात्मा परमात्मा रहते हैं, और वो परमात्मा ही टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। तो भागवत गीता में कृष्ण भगवान ने समझाया है कि आई एम कंट्रोलिंग नेचर, मैं ये प्रकृति का मालिक हूं और मेरे से ही प्रकृति चलती है। तो वो टेम्परेचर जो है, तो वहां बैठे बैठे कृष्ण भगवान परमात्मा स्वरूप में कंट्रोल करते हैं प्रकृति के टेम्परेचर को, उस वजह से शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल 98.6 होता है। थर्मामीटर लगाया है मुंह में और किसी को बुखार आया है तो उससे ज्यादा हो जाता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर वही हो जाता है टेम्परेचर हरेक प्रकृति का, हरेक आदमी का। वैसे कुत्तों में एक ही शरीर का टेम्परेचर है, सांप होता है उसका भी एक ही टेम्परेचर होता है, सांप का एकदम ठंडा शरीर है क्योंकि उसका खून है वो ठंडा खून है, उसका गर्म अपने जैसे खून नहीं है। तो हरेक योनि में जो आदमी जीवात्मा जाता है वो योनि का जो प्रकृति होता है वो हिसाब से वो चलता है। तो यहां प्रभुपाद जी ने समझाया है, माने उन्होंने ये ट्रांसलेशन दिया है कि जीवात्मा तो वही है, जैसे आप जीवात्मा है, आप जीवात्मा है, लेकिन आपने 84 लाख उनियों में घूमते 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 ये भारतवर्ष में ये बहुत दुर्लभ है। भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं, मनुष्य जन्म पाया, आपने मनुष्य जन्म पाया है, बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ से आपने, बहुत तकलीफ से आपने जन्म पाया है, और मुझे बहुत आनंद और खुशी होती है कि ये रविवार सुबह को जल्दी जल्दी आप लोग सब आए हैं, नहीं तो बहुत लोग तो सो जाते हैं, उठते भी नहीं है। तो ऐसे तकलीफों में से आप इतने तक आए हैं, अभी थोड़ा सा ही बाकी रह गया है, क्योंकि इतने करोड़ों जन्मों में, कितने करोड़ों सालों के बाद ये आपका जन्म हुआ है, तो अपना अभी थोड़ा साल बाकी रह गया है सबका। किसी का जवान हो तो उसका 50-60 साल बाकी है, या हमारे जैसे बुढ़े हो गए 65 ईयर ओल्ड, तो हमारे शायद 10-20 साल मैक्सिमम रहेगा, लेकिन अभी बहुत टाइम नहीं रहा है अपने लिए। तो ये चित्रकेतु महाराज की बात ऐसी है कि उसको ऐसा लगता था कि मैं तो राजा हूं, लेकिन मेरा, मेरे बाद कोई लड़का ना हो तो मेरा वंश कैसा चलेगा। तो अंगिरा मुनि के पैर पकड़ लिए थे उन्होंने, आपने सब सुना है पहले की बात, अंगिरा मुनि मने नारद मुनि के छोटे भाई। तो पहले तो वो अकेले आए थे अंगिरा मुनि, तो अंगिरा मुनि को कहा कि मेरे को लड़का चाहिए ही, और जिद पकड़ लिया उन्होंने। जिद पकड़ना ठीक है, लेकिन जिद किसकी चीज, कौन से बारे में उन्होंने जिद पकड़ लिया, ये कि मेरे को एक लड़का चाहिए, मने मेरा ये जो राजपाट है वो फिर वो चला सकेगा। आप जीत पकड़े हैं कि मेरे को सेवा चाहिए कैसे भी करके भगवान की, कृष्ण भगवान की, जगन्नाथ जी की, वो अलग चीज है, उसमें आनंद आता है। नारद मुनि या अंगिरा मुनि या कोई बड़े साधु संत को कि हाँ ये बहुत अच्छा डिवोटी है, भक्त है, लेकिन ये जो जब शरीर के बारे में जीत पकड़ते हैं तभी उनको अच्छा नहीं लगा था, तो भी इतना सब जिद पकड़ लिया तो उन्होंने बोला देखो आपको लड़का होगा लेकिन आपको शोक भी होगा और हर्ष भी होगा, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है। कृष्ण भगवान समझाते हैं ये दुनिया कैसी है कि अपने को सबको क्या होता है, इधर याद है हाँ, दुखालयम लेकिन अशाश्वतम, टेम्पररी है, दुनिया भी टेम्पररी है और आपका दुख भी टेम्पररी है, क्योंकि जो कुछ ये दुनिया में है वो टेम्पररी है, तो उस वजह से अपना शरीर भी टेम्पररी है। लेकिन ये तैयार नहीं था सुनने को चित्र केतु महाराज उस टाइम, क्योंकि उसने हजार रानियां की थी तो भी कोई लड़का नहीं हुआ था, बच्चा नहीं हुआ था। तब लास्ट में अंगिरा मुनि ने उसको आशीर्वाद दे दिया कि अच्छा होगा, लेकिन ये ध्यान रखो जिसके कारण से तुमको सुख होएगा उसी कारण से तुमको दुख होगा, क्योंकि ये दुनिया में ऐसे मंदिर में ही आनंद है, क्योंकि आनंद के सामने कुछ नहीं है, लेकिन बाहर की दुनिया में सुख आएगा, सिनेमा देखेंगे सुख होगा या रेस्टोरेंट में जाएंगे सुख होगा, लेकिन फिर पेट दर्द होगा या कुछ प्रॉब्लम होगा तो दुख होगा, क्योंकि सुख के सामने दुख तुरंत आ जाता है ना, सबने अनुभव किया है। तो उसने चित्रकेतु महाराज ने कहा मेरे को लेक्चर वेक्चर मत दो, हमको तो लड़का चाहिए, बस एक ही पॉइंट प्रोग्राम है। तो अंगिरा मुनि ने कहा देखो क्या होता है, तो आपको सबको पता है, फिर वो लड़का हुआ, बहुत राजी खुशी हुआ, जो माता जो बड़ी उनकी रानी थी उनको ही लड़का हुआ था, तो वो रानी पटरानी हो गई और बहुत उसको भी थोड़ा गर्व हो गया कि मेरा लड़का है। दूसरी रानियों ने फिर विष दे दिया वो लड़के को और मार दिया उसको, क्योंकि वो रानियां भी ये शरीर के माध्यम से ही चल रहे थे, उनको वही था कि हमारा लड़का नहीं हुआ लेकिन ये रानी का हो गया, उसको क्यों इतना सब राजा ध्यान देते हैं, हम लोग को ध्यान भी नहीं देते हैं, देखते भी नहीं आजकल, उनके ही पीछे फिल्म स्टार जैसे लट्टू होता है वैसे गोल गोल घूमते हैं। तो फिर वो लौटे उसको मार दिया वो बेचारे लड़के को। तो ये दुनिया में यही है कि जो आप नहीं धारते वही होगा, आप ऐसा धारेंगे कि ये मेरा दोस्त है मित्र है या कोई मेरा पार्टनर है बिजनेस में, लेकिन वही तुमको मार देगा दगा देगा, ये हुआ है कितने बार हुआ है और होगा ही, क्योंकि ये यहां का क्रम है, ये दुनिया का क्रम है, नहीं तो ये दुनिया ऐसा चलेगी कैसे। तो उसके वजह से हम लोग को ये महामंत्र का आसरा लेने से सहारा लेने से ही अपना काम होता है ये कलयुग में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसका जो आपके ऊपर जो प्रभाव होता है ये दुख सुख का वो कम हो जाता है और आनंद का प्रभाव शुरू हो जाता है, आपको अत्यंत आनंद अनुभव हो जाता है। ऐसे तो मैं हिंदी में बहुत प्रवचन नहीं करता हूं, हम लोग इंग्लिश में करते हैं बॉम्बे में, तो मुझे माफ कीजिए कि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं, मेरे को प्रैक्टिस भी नहीं, मेरे को पता नहीं कि आज मैं बोलने वाला भी हूं, मैं तो उनको सुनने आया था प्रभु जी को, लेकिन उन्होंने मैंने मेरे को इधर बैठा दिया। तो फिर ऐसा है कि प्रभुपाद समझाते हैं बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कि जो अपना संबंध होता है ये तीन चीज बहुत महत्व की है। पहला तो संबंध, अपना जो संबंध, हम लोग सब मान लिया है कि ये मेरे पिता है माता है, वो तो शरीर से संबंध है ही शुरू में, क्योंकि ऐसा देखा जाए तो भागवत गीता में समझाते हैं कि अपने अनेक माताओं हैं, एक माता नहीं है, पहले तो अपनी जो माता जिसने जन्म दिया अपने को वो भी माता है, गौ भी माता है, गंगा जी भी माता है, गुरु की जो पत्नी है वो भी माता है, जो अपने को दूध पिलाती है नर्स हो शायद वो भी माता है, वैसे अनेक माताएं हैं। पिता कितने हैं फिर वो सवाल आ जाता है, माताएं तो इतनी सब है पिताएं कितने हैं। आठ बार कृष्ण भगवान कहते भागवत गीता में सर्वभूतेषु अहम ब्रजवित पिता, आई एम द सीड गिविंग फादर, मैं ही पिता हूं, असली पिता तो मैं हूं सब जीवात्माओं का, शरीरों का नहीं कहते, शरीरों का तो माता है प्रकृति, जैसे हमने पहले किया बोल दिया आपको, लेकिन जो जीवात्मा का पिता है वो प्रकृति नहीं है, और हम लोग जीवात्मा है, हम शरीर नहीं है। ये पहली चीज क्लियर होना चाहिए अपने को। और हमेशा हम जीवात्मा रहेंगे, हमेशा हम शरीर नहीं रहेंगे। और अपना जो असली शरीर जो है अपना, जो जीवात्मा के संबंध में है परमानेंट, वो शरीर हम लोग छोड़ के आ गए हैं। जैसे कि आप कोई देश में जाएं और अपने सब कपड़े बपड़े सब वहां रख के आए, हम जैसे बॉम्बे में मेरा है घर है, सब परिवार है, कपड़े हैं, सब कुछ मेरा वहीं रह गया है और मैं अभी बेलगाम आ गया है, सही है ना। फिर ये तो वापस जाऊंगा ना वहां, तो वैसे ही अपने को वापस जाना है गोलोक वृंदावन। ये अपने ध्याय होना चाहिए, एग्जैक्ट अपना डायरेक्शन होना चाहिए, मैंने कहां हम जाने वाले हैं। जैसे आप एरोप्लेन में बैठ गए, जैसे हम बैठने वाले हैं 11 बजे, तो मेरे को पता है कि मैं एरोप्लेन में बैठूंगा तो बॉम्बे जाऊंगा, लेकिन हम गलत दिशा में चले गए और मद्रास तरफ चले गए। फिर एक बार उड़ने लगे फिर किसी को बोल नहीं सकते पायलट को कि भाई ये मद्रास क्यों जा रहा है, हमको बॉम्बे जाना था। उसने बोला तुम गलत एरोप्लेन में आ गए। वैसे ही आप गलत शरीर में घुस गए, एक बार फंस गए, फंस जाते हैं। तो एक बार आप, वो ही कहते हैं प्रभुपाद जी कि कितने सब शरीरों में से हम लोग घूमते घूमते आए। हर एक शरीर में जैसे कि शेर होता है, माने टाइगर बाघ होता है, क्या बोलते हैं मराठी में, हमी बाघ बोलते हैं ना, इकड़े तो हिंदी में बोलते हैं ना हम लोग, क्योंकि दोनों है ना, कनाडा मेरे को नहीं आता है मराठी माला गोष्टी करा लेते, तो त्यांनी सांगितलं मराठी मध्ये नको करू, तो मी बोला बराबर आहे काय हिंदी में करेंगे, हम थोड़ा ट्राय करेंगे, मेरा हिंदी तो चौपाटी में हम रहते हैं तो भेलपुरी हिंदी होता है, मिक्स्ड सब गुजराती मराठी हिंदी, बॉम्बे का हिंदी है। तो जो भाग होता है उसका जो ताकत है, उसका खाने का पीने का भी ताकत है, सब चीज में ताकत है, वो आदमी में नहीं हो सकता है, लेकिन उसका बुद्धि नहीं है ये सब विषय पढ़ने का। श्रीमद् भागवतम, चैतन्य महाप्रभु का कृपा से वो कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन इतने भाग ने किया, एक ही भाग ने किया, जो झारखंड में थे, झारखंड में जो चैतन्य महाप्रभु को मिले, उनका जिससे जिससे कॉन्टेक्ट हो गया, वही मेन पॉइंट है कि जिससे जिससे कॉन्टेक्ट हो गया भगवान का। जैसे आपने बिजली का वायर को हाथ लगा दिया तो आपको भी करंट लगने वाला है ना, क्योंकि वो बिजली का जो वायर है वो ऐसा यहां से वहां जाता है, कनेक्शन होता है, जंक्शन बॉक्स होता है, जंक्शन बॉक्स का केबल जाता है पावर स्टेशन में। तो भगवान जो है वो पावर स्टेशन जैसे हैं, सबको बिजली देते हैं, वैसे ही सबको आनंद देते हैं। और स्वयं क्या है भगवान, सत चित और आनंद है, वही उनका शरीर है। ब्रह्म संहिता में है ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये हो गया, आप सबने सुना है ये, तो हम लोग भी है या नहीं है, बताया कि हम लोग जीवात्मा, तो माने कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि सर्वभूतेषु अहम् प्रतिपिता, तो हम भी सच्चिदानंद है क्या, तो सत्य में तो वही है कि हम तो सच्चिदानंद है। छोटे से ये बाल है अपना, उसका 10,000वां भाग है, वही साइज के हैं, बहुत छोटे। हमने एक बार ट्राई किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसको देखने के लिए बाल को, और 10,000वें भाग कितना होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखा हमको, बहुत स्मॉल, बहुत टाइनी है वो, माने फिजिक्स के बाहर है। ये जो लौकिक दुनिया की जो साइंस है उससे दिखा ही नहीं सकते। उस वजह से जब जीवात्मा निकल जाता है शरीर में से तो अपने को दिखाई नहीं देते, क्योंकि अपनी जो ये आंखें हैं वो परफेक्ट नहीं है, उसमें भी खामी है, और हम लोग भूल कर देते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, इल्यूजन हो जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं। तो उस वजह से ये चित्रकेतु महाराज इतने बड़े महान राजा होने के नेते भी वो ये भूल कर बैठे, तभी वो ऐसे समझे फॉल्सली एक्सेप्ट हिमसेल्फ
वो ऐसे ही समझते हैं कि ये मेरा रिश्ता है, मेरा संबंध है। अपना संबंध तो असली तो एक ही है श्री कृष्ण भगवान के साथ। फिर क्योंकि कृष्ण भगवान ने अपने फायदे के लिए, अपने हम तो बिजनेसमैन है, हम तो फायदा ही देखता है, नुकसान नहीं चाहिए अपने को। बिजनेसमैन सबको फायदा चाहिए, ऐसा बिजनेसमैन मेरे को मिला नहीं है जो बोलता है कि मेरे को नुकसान दे दो, कोई नहीं होगा। अपने को फायदा चाहिए तो वही अपने को चाहिए ना, वही चीज अपने सत्य में है तो वही अपने को फायदा चाहिए। तो उत्तम फायदा कौन सा है जो परमानेंट फायदा हो, ऐसा नहीं हो कि जैसे इनकम टैक्स वाला पूरा पैसा ले जाए उसमें क्या फायदा है वो तो ले गया, रेड हो गया। तो डेथ जो है, मृत्यु तो रेड है ना, और क्या है, शरीर में से जीव आत्मा निकाल देते हैं वो, जो यमराज के जो दूत होते हैं वो निकाल देते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर की माफ़ी का आपका पैसा निकालते हैं, किसे में से, तिजोरी में से, वैसे ही ये तिजोरी है शरीर, उसमें से जीवात्मा जो धन है वो निकाल देते हैं। और फिर जाता कहाँ है वो, तो वो उनके घर पे जाता है यमराज के वहां जीवात्मा, उसको ट्रेनिंग देने के लिए। और वो ट्रेनिंग ऐसा देंगे कि आपका जो हिसाब किताब होगा मैंने कर्म के सिद्धांत से, वो हिसाब से दूसरा आपको शरीर मिलेगा, वो बताते हैं यहां प्रभुपाद जी। ये सब झंझट में पड़ने की क्या जरूरत है, बहुत शरीरों हम लोग ने खाया पिया, हर एक प्रकार का सब कुछ हम लोग ने आनंद यही मैंने मंदिर में मिला है, सुख दुख तो बहुत मिला है। तो अपने को एक बार ये टेस्ट आ गया आनंद का, तो वही अपने को चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए अपने को। फिर प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो संबंध के बाद क्या होता है, अभिदय, अभिदय। हाँ, तो संबंध एक बार हो गया अपने को गुरु के कृपा से, भक्तों की कृपा से, कि ये संबंध अपना ये नहीं है, वो संबंध है सच्ची संबंध। यही बच्चा बोलता है ना, वो जो मर गया चित्रकेतु का, वो क्या बोलते थे, मेरे तो अनेक माँ बाप हो गए, आप कौन से माँ बाप की बात कर रहे हैं, वो यही कहा ना उन्होंने, आप लोग ने सुना होगा पहले। तब चित्रकेतु महाराज को और उनकी रानी को और सबको याद आया कि ये तो जीवात्मा, बड़ा जीवात्मा है, एकदम गंभीर आवाज में छोटा बच्चा बोलेगा तो आप भी घबरा जाएंगे कि मेरा बच्चा तो 5 साल का भी नहीं है और एकदम बड़े बड़े आदमी जैसा बात बोल रहे हैं, कोई भी आदमी घबर जाएगा, ऐसा लगेगा कि भूत आया या क्या आया। तो वैसे ही हो गया चित्रकेतु महाराज का, फिर वो मगज खुल गया, माइंड ओपन हो गया कि अभी ये सच्चा बोल रहे थे अंगिरा मुनि और ये नारद मुनि, क्योंकि बाद में दोनों आए लास्ट में। तो चित्रकेतु महाराज उस टाइम समझ गए कि ये संसार अपना है वो टेम्पररी है, बहुत कम वक्त के, जैसे यहां मैं देखता हूं मेरे जैसे ही है बहुत सफेद बाल वाले, तो उनको पूछिए कि आप छोटे थे 10 साल के 15 साल के याद है, हाँ बस क्लास याद है, शादी का दिन याद है, हाँ शादी का दिन याद है, बच्चे हुए तो याद है, हाँ वो भी दिन याद है, ऐसे ही लगता है कि 10 मिनट पहले ही हुआ था, ऐसे ही लगता है ना। क्योंकि जीव आत्मा को वक्त माने टाइम काल उसका कोई असर नहीं है जीवात्मा के ऊपर। और जो हम लोग विचार करते हैं वो जीवात्मा के करंट से विचार करते हैं, जैसे टॉर्च होता है बैटरी, रात को लगाते हैं ना टॉर्च, तो बैटरी कंडम हो बंद हो या नहीं हो तो बत्ती जलेगा ही नहीं, आपको दिखाई नहीं देगा। वैसे ही जीवात्मा नहीं होगा तो मगज नहीं चलेगा आपका, क्योंकि वो जीवात्मा की शक्ति से वो मगज चलता है। क्योंकि जो अपना मन है बुद्धि है उसको भी वो करंट चाहिए जीवात्मा का, जो मिनट जीवात्मा निकल गया शरीर में से फिर वो कंडम बैटरी हो गया, खत्म, फेंक देने का है, जला देने का है। जैसे हम बैटरी को जला देते हैं या फेंक देते हैं, शरीर को भी ऐसे ही होता है। नहीं तो कितना मूल्य है, शरीर का एक ऑर्गन भी निकालो, आजकल बेचते हैं कहां कहां, मद्रास में मैंने सुना है किडनी, 2 किडनी है इसमें से एक बेचेंगे 10 लाख रुपया की, 5 लाख जो मांगता है वो दाम में मिल गया तो मिल गया, लेकिन मर गया आदमी को कुछ नहीं है, उसका बैटरी डाउन खत्म, फिर उसका जला देने का पूरा शरीर। तो वो चित्रकेतु महाराज समझ गए, आपको भी समझ जाना चाहिए कि अपना एक बार मर गए फिर वो संबंध खत्म हो जाता है। वही लड़का वही लड़की वही औरत या मर्द या बाप या माँ बोलेंगे भाई इसको ले जाओ अभी घर से निकालो शरीर को, क्योंकि क्या, क्योंकि वो देह है, विग्रह नहीं है। हमने बताया ना पांचवा अध्याय का पहला श्लोक है 5.1 ब्रह्म संहिता, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, विग्रह है कृष्ण भगवान का विग्रह है अनादि राधिर गोविंद, देह नहीं बोला है, विग्रह शब्द इस्तेमाल किया है। सच्चित आनंद विग्रह होता है, विग्रह का अंत नहीं होता है, विग्रह जला नहीं सकते आप, वो भागवत गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा है। तो जो जीवात्मा है और जीवात्मा के संबंध में जो शरीर होता है, संबंध की बात करें, वो जीवात्मा का शरीर अपना जो है ना अभी वो पड़ा है हमेरा सबका, जो जीवात्मा का शरीर भगवान के धाम में ही है फिक्स डिपॉजिट में, जैसे आप सेफ में रखते हैं ना, हम तो बिजनेसमैन है उसके लिए जानते हैं सेफ क्या चीज है, तो बैंक का सेफ में पड़ा है वहां गोलोक वृंदावन में, तभी फिर से अपना जन्म होगा शायद वहीं वैकुंठ धाम में, तो वो शरीर आपको फिर से प्राप्त हो जाएगा वहां के मां के उदर में पहली बार, जब यहां से अपना छुटकारा हो गया ये दुनिया से, वही आपका देह होना चाहिए कि अभी फिर से ये जन्म लेना ही नहीं है दुनिया में, कुछ भी हो गए संबंध वहां होना चाहिए अपना, विरजा नदी के पार, विरजा नदी है ना, विरजा नदी वो अपना ब्रह्मलोक है ना, टॉप मोस्ट प्लेनेट है जो ये लौकिक दुनिया है, ये सृष्टि है लौकिक, उसके बाद विरजा नदी होती है वो बॉर्डर है, उसके बाद वैकुंठ धाम शुरू हो जाता है। तो बहुत से लोग बैठे हैं विरजा नदी के किनारे पे, मायावादी वो भी बैठे हैं ध्यान करते हैं, लेकिन कोई आता नहीं उनको लेने के लिए, फिर से वो आना यहां ही होना अपना मटेरियल वर्ल्ड में। अपना जो संबंध हो जाता है गुरु महाराज से डिवोटीज से, तो वो डिवोटीज या राधा रानी या कोई भेज देंगे एक नाव जैसा, वो जीवात्मा फिर विरजा नदी पार कर सकते हैं, फिर वैकुंठ धाम में आप जाएंगे, फिर वहां आपका जन्म होगा पहली बार, और वहां ट्रेनिंग होगा आपको, वहां की जो माताएं हैं उनके ही उदर में होगा, क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा है भागवत गीता में, जिसका मृत्यु है उसका जन्म है और जिसका जन्म है उसका मृत्यु है। वो पहली बात तो क्लियर है कि आपने भी देखा है जिसका जन्म है उसका मृत्यु है ही। मेरे को बताओ 1000 पुराना आदमी, 10000 पुराना आदमी, 10000 साल नहीं हो सकता है कैसे कोई, वो तो मृत्यु होने वाली जिसका जन्म हुआ है। वैसे ही मान लीजिए कि जिसका मृत्यु हो गया है उसका जन्म होने ही वाला है, नाशवंत है जीवात्मा, लेकिन कहां जन्म होने वाला है वो आपके ऊपर आधार है, वो यमराज के ऊपर आधार नहीं है, क्योंकि यमराज भी एक मर्यादा में है कि आपका जो कर्म विकर्म हुआ तो यही जन्म होगा, अकर्म होगा तो विरजा नदी के पार होगा। आपको मालूम है ना ये तीन चीज, कर्म विकर्म और अकर्म, भागवत गीता में बराबर समझाया है कृष्ण भगवान ने। जो अकर्म है जैसे ये मंदिर में अकर्म होता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम पाद सेवनम आत्मनिवेदनम, नौदा भक्ति है वो अकर्म है बाय डेफिनेशन, मैंने सिद्धांत के हिसाब से। किसने समझाया ये? प्रहलाद महाराज ने समझाया। ये अकर्मक क्या है? वो ये नव चीज है, नव चीज में से कोई भी करो या सब करो या कोई भी कॉम्बिनेशन दे रहा हो तो अकर्म हो गया, और जो इसके बाहर करेंगे आप ये नव नवदा भक्ति के बाहर, वो कर्म हो गया और फिर से फंस जाते हैं यही दुनिया में। तो मान लिया कि हम लोग विरजा नदी तक पहुंच गए, तो अच्छे कोई डिवोटी आ गया, जो राधा रानी विचार किया वो आ जाएंगे, क्योंकि वही शक्ति है, राधा रानी कंट्रोलर है, जैसे प्रकृति यहां कंट्रोल करती है अपने सबको, वो राधा रानी वहां की कंट्रोलर, वही खुद भी आ सकती है, उनका ऊपर आधार है, किसी को भेज भी सकती है, आप समझ गए ना। तो उस टाइम विचार मत कीजिए कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं बोट में। अरे भाई वो डिवोटी आ गया, राजा रानी दे जाए, बैठ जाओ जल्दी, चलो अपना पार हो गया, बेड़ा पार हो गया, आप समझ गए ना। अभी हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि ये दुनिया में से कैसा छुटकारा मिलाना है। फिर एक बार विराजा नदी क्रॉस हो गया, उसके पहले क्या करने का सबको, हरे कृष्ण प्रभु जी आपको तो मिले हम पहले, तो विराजा नदी क्रॉस हो गया तभी महामंत्र का चांटिंग करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। टिकट का ये खर्चा है, जैसे बस में गए, बोट में गए, एरोप्लेन में गए, यहां भी ट्रेन में गए तो पैसा देना पड़ता है ना आपको, नहीं तो उतार देगा ना कंडक्टर आपको, कहां है टिकट तेरा। तो ये आपका कॉस्ट है महामंत्र करने का, जप करने का। कहां लिखा है ये, शास्त्र में लिखा है। कौन से शास्त्र में? कलिसंत उपनिषद में। कलिसंत उपनिषद में श्लोक है कि आप जैसे बहुत बड़ा बॉम्बे में बंगला फ्लैट चाहिए तो 3.5 करोड़ रुपया देना पड़ता है ना, वैसे ही आपको 3.5 करोड़ ये चांटिंग करना पड़ता है महामंत्र का। उसमें लिखा है, ये फिगर है, आंकड़ा है उसमें, 3.5 करोड़ का वो कॉस्ट है, उसका मूल्य है, आपको पेमेंट देना पड़ेगा उसके लिए। मिनिमम कम से कम 16 राउंड करते हैं आप तो कितना साल लगता है, 55.5 साल लगता है, आप गिनती कर दीजिए। 20 राउंड करेंगे तो 40 साल में हो जाएगा काम आपका। तो इसलिए जितना आप राउंड करेंगे, एकादशी के टाइम 64 राउंड करेंगे, जैसे ये डिवोटीज आप लोग करते हैं ना यहां भक्त लोग, 32 शुड डू 64, टेल देम दे आर डूइंग इन बॉम्बे 64 राउंड दे आर डूइंग डिवोटीज मीन्स फुल टाइम डिवोटीज। आप जल्दी सुबह में 3 बजे उठ के शुरू कर दो, क्योंकि जितना जल्दी आप ये महामंत्र का जप करेंगे, किसने करा ये, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने अभी अभी किया है, 100 साल भी नहीं हुए उसका, उन्होंने मायापुर में बैठ के पहली चीज यही किया, 3.5 करोड़ रुपया बोल दिया, 3.5 मैं बिजनेसमैन हूं, 3.5 जप कर दिया, समझ गया ना, मेरे को तो सब रुपया ही दिखता है। नहीं ये गलत है, मेरी गलती है, क्योंकि अपने को जप करना है। तो ऐसे ही मान लीजिए कि एक महामंत्र 1 रुपया है, आप समझ गए। तो ये बहुत महत्व की चीज है, ये कभी मत छोड़ो, कुछ भी होए, आकाश पाताल एक हो जावे, लेकिन ये महामंत्र नहीं छोड़ना है अपने को, क्योंकि यही अपना आसरा है, अंतिम यही फाइनल सोल्यूशन है, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। ये चीज चित्रकेतु महाराज समझ गए अंत में, जब उनको गुरु कृपा हुई तभी नारद मुनि द्वारा। नारद मुनि तो बहुत बड़े महान गुरु है अपने एवं परंपरा में, उनके तो क्या क्या शिष्य हैं, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज साक्षात, उनके तो एक नाग भी एक उनका शिष्य हुआ था। अब विचार कीजिए कौन गुरु दुनिया में मिला है जो नाग को भी शिष्य बना सकता है और उसका कल्याण कर सकते हैं। तो ऐसा गुरु होना चाहिए, अपने एवं परंपरा में है, अपने को गर्व होना चाहिए कि ऐसे गुरु परंपरा में अपना जन्म हो गया है। क्योंकि जो द्विज का मतलब क्या है कि 2 बार जन्म होना है ना, एक तो माँ बाप ने तो जन्म दिया ही है अपना पासपोर्ट में जो नाम लिखा है वो, या वोटिंग कार्ड में लिखा है, सेशन कार्ड में, लेकिन अपना दूसरा जन्म कौन सा होता है, जब अपना दीक्षा होता है, गुरु नाम देता है अपने को। जैसे देव अमृत प्रभु नाम है, वो इतना अमृत देने वाला डिवोटी है, तो देवों को भी अमृत देते हैं तो अपने को क्यों नहीं देंगे। अमृत का मतलब क्या है, जिसका मृत्यु ना हो, मृत्यु की बात चल रही है ना, तो उनका नाम ही देव अमृत है, कि देवों को भी मृत्यु होता ही है, ऐसा नहीं कि देवों को नहीं होता है, सब देव, इवन ब्रह्मा बोलते हैं कि मेरे को मृत्यु होती है, रावण को बोलते हैं, रावण ने बोला कि मेरे को वरदान ऐसा तो हिरण्यकश्यपु, सब ये ऐसे ही है सब लोग, ये जो अपने आसुर लोग उसके राजा, कि हमको मृत्यु ना हो। अरे ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे को ही मृत्यु हो तो मैं कैसे आपको ऐसा आशीर्वाद दे सकता हूं। गलत तो बोलेंगे नहीं कभी, ब्रह्मा जी गुरु है, आचार्य है, सबसे बड़े। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं नहीं भाई, ये मेरे से गलत काम नहीं होगा। तो हिरण्यकश्यप ने बोला, दिन में नहीं मरू, रात को नहीं मरू। उसको ऐसा था कि मेरे में बहुत अक्कल है, लेकिन पता नहीं था कि नसीब भगवान ने ही उनका अक्कल बनाया है। जो बनाने वाला है वो तो उससे जो ज्यादा होएगा ही। तो एक सोल्यूशन निकाला नसीब भगवान का, जो जन्म हो गया। तो ऐसा इतना सुंदर रीत से करते हैं भगवान सब काम। आप देखेंगे फल भी, ये इसमें क्या बढ़िया सुगंध आती है। हाँ, क्यों आती है, कहां से आती है? इस जमीन में से आती है। आप जमीन लेके आप सुंगो तो जमीन में तो कच नहीं है, थोड़ा बारिश होएगा तो थोड़ा सुगंध होता है, लेकिन वो भी टेम्पररी है। लेकिन ये तो नहीं आती है, ये तो जमीन में से ही सुगंध आया झाड़ के द्वारा। तो कैसे काम किया उन्होंने, कोई नहीं कर सकता ऐसा। वो तो समझ जाना चाहिए ना। अभी आम का सीजन आ गया, मैंगो, इतनी गर्मी में बेचारा वो झाड़ खड़ा है वहां, है ना। और फिर पकते 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 एकदम फर्स्ट क्लास शुद्ध अमृत जैसा आ जाता है आम, आम का जो रस होता है वो। लेकिन आप विचार कीजिए कि वो इतने तपस्या नहीं करेगा, तापेती तपस्या, जो ताप होता है ना गर्मी, उसको ताप बोलते हैं संस्कृत में। तो जो ताप लेता है खुद के ऊपर गर्मी, उसको नाम है तपस्या, तापेती तपस्या। तो वो जो झाड़ है, ये हम लोग कैरी बोलते हैं मराठी में, कैरी सांगते ना आम ना, तो इतना ताप होता है तभी उसका फल मिलता है। वैसे ही अपने को यहां बैठते हैं तो ताप चाहिए, नहीं मिलता हो ताप तपस्या तो मांगना चाहिए कि भाई मेरे को तपस्या दो तो मैं अमृत बन जाऊं। तो ये जो पूरा जो चैप्टर है वो अमृत के ऊपर है, जहां मृत्यु न हो। क्योंकि उसने देखा कि मेरा लड़का मर गया, बाप के पहले ही लड़का मर गया, वो अच्छी चीज नहीं है। बाप के बाद लड़का जाना चाहिए ना, माँ बाप को बहुत खराब लगता है जब लड़का मर जाता है। तो एक ही लड़का, वो भी इतने तकलीफ से हुआ। तो अभी मेरा टाइम बहुत नहीं है, लेकिन मेरा इरादा है कि ये दो मिनट में बंद करूं। दीज इल्यूजन्स कंटिन्यू, ये जो भ्रम है अपने को वो चालू ही रहता है। इतने सब जन्मों से हम लोग 84 लाख कुनियों में से आते आते ये जन्म हुआ अपना। तो एक चीज कंटिन्यूस रहा है, वो ब्रह्म इल्यूजन कंटिन्यूस। वो पहले का अपने को, किसी ने मेरे को पूछा कि कैसे मालूम कि ये अपना पहले कुत्ता का शरीर हुआ है। मैंने बोला आप कुत्ता माँ बाप भी बने, नहीं तो ये छोटा कुत्ता का बच्चा होता है कितना प्यारा लगता है। क्यों, वो अपना तो लड़का नहीं है, वो बच्चा नहीं है, वो तो कुत्ते कुत्ती का है ना। लेकिन हम कुत्ता कुत्ती थे तभी वो बच्चा अच्छा लगता था, वो याद रहा अपने को, है ना। उसके लिए तो सब लोग उसको दूध पिलाते हैं, गाय का दूध निकाल के कुत्ती को पिलाते हैं। गुजराती में हम लोग बोलते हैं ये गाय नु दूध कुत्ती ने पिलाई, मीन्स वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया। गाय का दूध तो भगवान को चढ़ाना चाहिए, भक्तों को पिलाना चाहिए, लेकिन आजकल क्या है, कुत्ते को पिला देते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग पहले ये बन चुके हैं। मैंने देखा है कि जो छोटा छोटा होता है बच्चा, बिल्ली का हो किसी का भी हो, प्यारा लगता है, क्योंकि वो हम लोग वो कंडीशन हो गए हैं पहले। अभी वो डीकंडीशन होना है, माने उसमें से बाहर निकलना है चक्रव्यूह में से। और जो चक्रव्यूह में फंस जाते हैं ना, जैसे अभिमन्यु थे, वो अभिमन्यु अपने अर्जुन भाई है ना, अर्जुन उनका लड़का था वो। और वो पहले क्या था, वो एक असुर था उसका पहले जन्म में, यही अभिमन्यु। लेकिन उसका ध्यान क्या था कि मैं अर्जुन जैसा बनूं, मेरे को अर्जुन नहीं चाहिए बाप। तो वैसा मिला उसको, क्योंकि जो अंत समय में आपका जो विचार है, भागवत गीता की बात है, वही आपका जगह होगा, स्थान हो जाएगा नेक्स्ट। लेकिन कृष्ण भगवान सब जानते थे ये तो असुर है, अर्जुन का लड़का है, अच्छी बात है, मेरा दोस्त का है, प्यारा दोस्त का है, लेकिन वो तो है ही ऐसा। तो आधा ही सिखाया उसको, वो उधर में था कौन, ये अपना अभिमन्यु माँ की उधर में था, तो ध्यान से सुनता था वो। लेकिन जैसे प्रहलाद को पूरा सिखा दिया, इसको आधा ही सिखाया, आप समझ गए ना। तो चक्रव्यूह में अंदर कैसा घुसना सिखा दिया, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलना वो नहीं सिखा वो, तो वो फंस गया बेचारा, तो उसमें मर गया वो। तो ये भागवतम है चक्रव्यूह में से बाहर निकलने का रास्ता, आप समझ जाइए। ये पूरा है, 12 स्कंध है, या आप जो 12 स्कंध पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम, तो लास्ट जो श्लोक है, अंतिम श्लोक माने क्यूडी माने समरी, कंक्लूजन माने उसके बाद कुछ नहीं है। भवे भवे यथा भक्ति पाद योस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्वम न यतो प्रभो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनस तन्नमामि हरिम प्रम। नाम संकीर्तनम से ही सर्व पाप प्रणाशनम, समझ गए ना आप। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनस, आपका दुख भी हो कोई भी, सबको दुख है ना ये दुनिया में। ये राजा है, इंग्लैंड की रानी है, उसका लड़का है, उसको कितना सब दुख हो गया बेचारे को, अभी शादी भी हो गया उसका, लेकिन वो भी एक दूसरा दुख हो जाएगा देखो आप थोड़ा टाइम में। एक तो स्त्री उसकी मर गई दूसरे के साथ चले भाग गई, और वो ही हो जाता है। इतना माने अपना हिंदुस्तान जो देश है भारत, ये 150 साल तो वो विलायती लोग ने किया ना, यहाँ राजा बने वही वंश में से वो लड़का, वो अभी क्या नाम है चार्ल्स, प्रिंस चार्ल्स, कितना दुखी हो गया बेचारा, इतना सब पैसा है, सब कुछ है, पोजीशन है, लेकिन ऐसी औरत मिल गई उसको कि वो भाग गई। अभी दूसरी औरत है, देखो क्या होता है, हम लोग तो होंगे देखेंगे, वो औरत से कैसे सुख मिलेगा, औरत से कैसे सुख मिलेगा, नहीं मिल सकता है। हमने बहुत ट्राई किया, नहीं मिलता है। मेरे वाइफ ने भी ट्राई किया, उसको भी नहीं मिला है। फिर हम लोग ने विचार किया कृष्ण भगवान से सुख मिलता है, लेट अस गो टू लॉर्ड कृष्णा ओनली, देयर इज नो अदर सॉल्यूशन, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप किसी भी माता जी को पूछो, वो तंग हो जाता है कोई बार उनके पति से, और बोलती है ये मेरे माँ बाप ने क्यों आपके साथ शादी कराया, हो जाता है ऐसा विचार को कोई बार, तंग हो जाते हैं। सच बात है, कोई भी घर में जाओ, कहां भी जाओ दुनिया में, हम तो बहुत घूमते हैं, दुनिया भर में घूमते हैं, मेरा यही धंधा है घूमना, तो हम देखते हैं सब जगह में ऐसा है। तो उसका मतलब है कि इट्स यूनिवर्सल फिनोमिना, मैंने सब जगह में ऐसा ही है। उसके लिए ये जो बहुत अक्लवान होते हैं, जैसे मेरे मित्र खास हैं देवामृत प्रभु, तो ब्रह्मचारी शादी नहीं करते, वो उनके पिताश्री है, वो मेरे कंसल्टेंट में उन क्लाइंट था मिस्टर उपनी, वो इनकम टैक्स कमिश्नर थे और डिप्यूटी कमिश्नर, आई फॉरगेट, कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर, एक ही पुत्र। तो ये हमारे जो उपनी साहब थे रिटायर हो गए इनकम टैक्स कमिश्नर, तो मेरे एडवाइजर बन गए बहुत साल, इनको तो पता नहीं था कौन है हम, और संबंध नहीं था हम लोग का, मेरा संबंध उनके पिताश्री के साथ था। तो एक दिन वो सिर पे हाथ रख के हमारे टेबल के सामने बैठ गए, ये इस्कॉन वाले मेरे लड़के को ले गए, एक ही लड़का, लड़की भी नहीं। मैंने बोला नहीं अच्छा किया, आपका संबंध है, डिवोटी है वो, तो मानते नहीं थे। फिर क्या हुआ, उनके एक चाचा थे, बराबर है, आई एम टेलिंग टू मच अबाउट यू, ऑल योर सीक्रेट्स आर आउट टुडे। वो बहुत विरुद्ध थे इस्कॉन के वो, लेकिन क्या हुआ, जब वो मरने को आया ना वो चाचा, प्रभाव है जो जीव आत्मा जो भक्त बन जाते हैं वो अपने को बचा सकते हैं, कोई और बचा नहीं सकते। उसके लिए संबंध रखना है तो जीवात्मा से, भक्त हो उनसे ही अपना संबंध होना चाहिए, मामूली संबंध से अपना कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अभी मैं बंद करता हूं, कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो आप कृपा करके बोलिएगा, मैंने और नहीं बताया नहीं तो बेचारे को बहुत एम्बेरसमेंट हो जाता, हम उसके लिए मैं बोल सकता हूं, उनको खराब भी नहीं लगेगा।
रोजी आपने अस्पताल में पड़ोसी पेशेंट के मृत्यु का दृश्य दूतों को देखा था, कृपया अनुभव बताने का कष्ट करें ताकि कृष्ण नाम का महत्व हम सबको दृढ़ता से समझें।
हरे कृष्णा। 23 जून गए साल में मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ, बाईपास सर्जरी का। तो जब मैं भान में आ गया, आईसी यूनिट में थे ब्रिज कैंडी में, तो बाजू में जैसे आईसी यूनिट में 10 ऐसा बेड थे और बीच में ग्लास का पार्टीशन था, जैसा ये जाली का पार्टीशन है जैसे ग्लास का था। तो ये डॉक्टर और वो नर्स और वो सब हमारा तपास रहे थे, ब्लड प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है वगैरह वगैरह। और मैं पढ़ लेता था नाम डॉक्टर त्रिपाठी का, कि वो त्रिपाठी है, ये नर्स का नाम ये है, सब पढ़ता था देखता था, क्योंकि ऑपरेशन 7.5 घंटे के बाद मेरा ध्यान आ गया। तो बाजू का बेड मैंने बाजू में जो सो गए थे आदमी, तो वो देखा मैंने और वो ऐसा ऐसा लास्ट लास्ट कर रहा था। और फिर एकदम 3 व्यक्ति आ गए, जैसे वो गुजराती में वराल बोलते हैं, स्टीम स्टीम को क्या बोलते हैं मराठी में, क्या सकते हैं, वाह, हमको कनाडा शब्द नहीं मालूम है उसका, कनाडा में क्या बोलते हैं उसको, अच्छा वो बोल भी नहीं सकती। तो फिर वो ऐसे ही लगता था कि ये, लेकिन देख सकते हैं हम ये आदमी जैसा ही है, लेकिन उसका ये कपाल नहीं था, नो, जो बाल होता है ना ये नाक से ही शुरू हो गया, ये नहीं था, ऐसा आंख था और सीधा ये एकदम भयानक लगता था। एग्जैक्टली जो अपना भागवत में जो कवर में है ना पिक्चर, वो प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दिया ऐसा ऐसा पेंटिंग करो, तो हिसाब से वो लोग पेंटिंग किया है, शायद जादू रानी माता जी ने किया होगा वो पेंटिंग। तो फिर मैं देख रहा था, आई वाज शॉक्ड, भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, इतना जल्दी से आ गए अंदर उसका कैबिन में बाजू वाले में, और सीधा वो एक था वो बहुत माने तगड़ा था, पावरफुल था और लीडर था, दूसरे 2 असिस्टेंट थे। तो वो जो मेन आदमी था, आदमी नहीं, जो जो कुछ यमदूत के यमराज के जो थे, पहली बार मैंने देखा ये, और मैं अकेला नहीं हूं, 5 डिवोटीज ने अलग अलग जगह में देखा है। एक तो डिवोटी है गोवा वाले, उसने देखा है, एक डिवोटी बॉम्बे में है KEM हॉस्पिटल में देखा है, ये हॉस्पिटल में शायद ज्यादा देख सकते हैं। तो देखा और सीधा वो घुस गया, शरीर में से निकाल दिया उसको, जीवात्मा को, और ले गए। इतना फ्रैक्शन सेकेंड्स में हो गया ये सब कंप्लीट, बहुत एफिशिएंट, टू मच एफिशिएंट। और मैं बोलते रहा डॉक्टर को, डॉक्टर सी देखो देखो क्या हो रहा है बाजू का बेड में। डॉक्टर तो मेरा काम में पड़ा था, वो बोलता है तुमको इल्यूशन माने ऐसा भ्रम हो गया ये मेडिसिन की वजह से, हम लोग को बहुत लोग ने बोला है, हम कुछ देखता नहीं है, कुछ आई नहीं, ऐसा हुआ। तो उस टाइम मैंने तुरंत ही, जब गोविंद प्रभु आए मेरे को मिलने को हॉस्पिटल में, तभी गोविंद प्रभु ने सुना, तो उन्होंने तुरंत होशियारी से टेप रिकॉर्डर लेके आए और टेपिंग करा दिया मेरा, क्योंकि मैं भूल ना जाऊं। तो मैंने देखा वो, एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने वो 3 को देखा, व्यक्ति आके चले गए वो जीवात्मा को लेके, और वही बिछाने के पास 2 और व्यक्ति को मैंने देखा जो बहुत बहुत माने अनहैप्पी माने बहुत दुखी थे, ऐसा मैंने जीवात्मा देखा, वो शरीर में प्रवेश करने जा रहे थे, ऐसा भी देखा मैंने पहली बार, मैंने नहीं बीजी दूसरी बार मैंने भूत देखा, पहले भी देखा था ऐसा। वो मेरा बहुत फेमस है बॉम्बे में, वर्ली नाका है वर्ली में, और टाटा एक्सपोर्ट के शोरूम के सामने हमने रात को देखा था 2 बजे। लेकिन अभी अपने को कुछ नहीं होता है, घबरावन नहीं होता है, क्योंकि ये प्रभुपाद का सब पढ़ते हैं ना, फिर अपने को ऐसे लगता है कि हम देखते हैं ठीक है होगा क्या करें, वो अपने को कोई कष्ट नहीं होता है। माला जपो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, और अभय बन जाओ, भय नहीं होगा। हरे कृष्णा। 9 बज गए. थैंक यू.
हरे कृष्णा. वैसे श्रीनाथ जी प्रभु को फ्लाइट पकड़ना है, नहीं तो उनको और बिठा लिया होता यहाँ पर. और ऐसे ही सुंदर कथा बताते.
एक बार हम पहली बार आए कोल्हापुर में, 5.5 घंटे हमको बांध दिया, वो छोड़ा नहीं. एम आई राइट? फर्स्ट टाइम पूछते गए, बातें करते गए हम लोग.
तो हालांकि हम उनको भी यहाँ बांध के रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम ये नहीं चाहते कि उनका फ्लाइट मिस हो और आगे का काम रुक जाए. तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि यहाँ बेलगाम में बार बार आते रहें.
आप भी आते रहें. मेरा भी हक है बोलने का.
तो हम सब बेलगाम भक्तों की ओर से श्रीनाथ जी प्रभु को हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं. 3 बार हरि बोल कहेंगे.
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल.
हरे कृष्णा,
राधे राधे,
हरे कृष्णा. आप में से जो लेट आए, श्रीनाथ जी प्रभु का परिचय मैंने प्रवचन के पहले किया था, लेकिन संक्षेप में पुनः करना चाहूंगा. श्रीनाथ जी प्रभु बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं, 20 साल से अधिक से इस संस्था से जुड़े हुए हैं. और एक विशेष बात मैंने बताई थी कि स्वयं उन्होंने प्रभुपाद जी को अपनी गाड़ी में बिठाकर खुद चलाया और बॉम्बे.
मायावादी गुरु के शिष्य थे हम, तो फिर हम आर्ग्यूमेंट करते थे प्रभुपाद जी से. वो आर्ग्यूमेंट, एक जो आर्ग्यूमेंट था टेप में, इस्कॉन ने जो टेप बनाया था, वो हमारे देवामृत प्रभु ने पहली बार सुन लिया. मैंने भी नहीं सुना था वो टेप. वो बीमार हो गए थे, कुछ पैर टूट गया था ना आपका एक्सीडेंट में, तभी उनको कुछ टेप्स, पुरानी टेप्स किसी ने दिया था, रघुनाथ प्रभु ने शायद दिया था. तभी उन्होंने उनको ये जो मैंने बताया भूत की बात, वैसे ही लग गया होगा कि ये भूत कहां से आ गया.
तो श्रीनाथ जी प्रभु पहले प्रभुपाद से बहुत तर्क किया करते थे, ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, निराकार, ये वो सब बहुत कुछ करते थे. लेकिन प्रभुपाद की कृपा से इनके हृदय का परिवर्तन हो गया और देखिए आज अब आपके सामने, हम सबके सामने है ये परिवर्तित रूप. और फिर तो कई सालों से श्रीनाथ जी प्रभु इस्कॉन संस्था से जुड़े हैं, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, इसका प्रमाण तो हमने आज देख लिया. बड़े उत्साह से, प्रेम से सब भक्तों का देखभाल करते हैं और जगह जगह घूमते हैं, सुंदर प्रवचन भी देते हैं और साथ साथ अपना इतना बड़ा उद्योग संभालते हैं. बहुत बड़ा उद्योग है इनका, भारत में शायद ऊंचे श्रेणी के उद्योगपतियों में से हैं. लेकिन इतना होते हुए भी अपने व्यवहार में बहुत ही नम्र, भक्तों से बड़े मिलजुल कर रहते हैं. कोई उनके इसमें आपको दिखाई नहीं पड़ेगा कि वास्तव में बाहर के समाज में इतने बड़े व्यक्ति माने जाते हैं. और साथ साथ में विशेष करके हमें बहुत प्रेम इन्होंने दिया है और सब भक्तों को भी ऐसा ही अनुभव है. तो हम प्रार्थना करेंगे कि वो यहां पर बार बार आए. हरे कृष्णा.